તારીખ 5/7/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 242 અને 243 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 172.
કે રૂપ મેં સ્વીકાર નહીં કરતા, ભાવ નહીં અંતરાગી અંતરમાય નિર્ગ્રંથ હૈ એસે ગુરુ કે લિયે સ્વીકાર નહીં કરતા ઓર એસે નહીં હૈ જિસકો સ્વીકાર કરતે હૈ જિનકો સચ્ચી પહેચાન નહીં હૈ ગુરુ કહેતે હોતે હૈ દેવ કહેતે હોતે હૈ જિનકી પહેચાન નહીં सही पहचान नहीं होने से उनकी उपासना नहीं करता। उपासना में बहुमान करना, ठीक करना, पूजा करना, समर्पण करना और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करना, पुरुषार्थ करना, ऐसी उपासना जो नहीं करता उनको सूर्य का उदय होने पर भी अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत करता है, खाना पीना परिवार का पालन पोषण करना ये कुत्ते भी करते हैं और चिड़िया भी करती है, सुगंध भी करता है, वैसे मनुष्य होकर भी जो विवेक नहीं करता उनको अंधेरा ही अंधेरा है। वो अंधकार में चिड़ियन की तरह अपना जो जीवन व्यतीत करके दुर्गति में चला जाता है। उसे बहुधा संसार में पाप का ही बना रहता है। गुरुओं के द्वारा प्रणित शास्त्र के अभ्यास नहीं करके वे आंख होने पर भी हमने उनको नेत्र तो है, क्योंकि नेत्र से वो उपाधि को विषय करता है और पाप मंजन करके अगर नेत्र का चक्षु इंद्रिय नहीं है, नेत्र का उपयोग करना है तो शास्त्र का अध्ययन कर जो मित्रादि गुरुओं के द्वारा प्रणित है और अनंत जन्म मरण के नाश का कारण है। प्रणित बोध कैसा है? अनंत जन्म मरण के नाश का कारण या साक्षात निर्वाण के हेतु है, मोक्ष के हेतु है। ऐसे सत्शास्त्र विद्यमान होने पर भी आदमी ऐसे शास्त्र विद्यमान है, भगवान कृष्णाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, अमन भद्राचार्य, गोविंद आचार्य आदि अनेक आचार्यों के सत्शास्त्र मौजूद है, फिर भी उपेक्षा करके काम करके उनका अध्ययन नहीं करता है, वो अपने नेत्र का दुरुपयोग करता है। अंधा है उसको तो कितना अवगुण नहीं है जितना नेत्रवान को अवगुण होता है, कितना दोष होता है। देखता है उपाधि को, देखता है जो रंग उसको मन पसंद है उसको आसक्ति से देखता है, चाहे कपड़े का हो, चमड़ी का हो, किसी भी डिजाइन हो, तो आँख से आसक्ति देखने की चीज उनको अच्छी लगती है। ये जो सब चीज है पाप बनने के लिए का उपयोग क्या किया, आपका बंधन किया, शास्त्र को नहीं पढ़ा और विषय कषाय की प्रवृत्ति में इंद्रियों का उपयोग किया, चाहे नेत्र का करे, कान का करे, आंख का करे, कर्ण इंद्रिय, रत्न इंद्रिय, ये सभी पाप बंधन का ही कारण है। वो भोग सभी पाप व्यंजनों का ही कारण है। श्रीकांत पाप का व्यंजन होता है, श्री भी पुण्य का व्यंजन होता है, धर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं।
गाने लगता है जो सुनता है वो गाने लग जाता है, सुनने
खाने में क्या मिलता है आज तक? स्वतः बोलने लग जाता है, गाने लग जाता है, कैसे होता है? बिना सिखाई कैसे होता है? स्कूल में पढ़ाते हैं तो ट्यूशन लगता है, रखना पड़ता है, 15-15 साल तक, 20-20 साल तक स्कूल और कॉलेज में जाकर के उसको पढ़ाना पड़ता है, उसमें तो उतना परिश्रम करना पड़ता है। और ऐसे मामलों में बिना परिश्रम सहज ही सीख लेता है, बड़ा तो सीख ले, बच्चा भी सीख ले। तो ये संस्कार को मूल में पढ़ा ही है, अनादि से चला आया है, विचार है इसके ऊपर, तो वो कैसे होता है? कि ज्ञान में के की प्रधानता हो रही है अनादि से, और यही एक विपर्यास है। कैसे विपर्यास है? विपरीतता इसको क्यों कहते हैं? जब ज्ञान में अन्य पदार्थ का जानना हुए वो सहज है, स्वाभाविक रूप है, अनिवार्य है, तो उसको विपरीतता कैसे कहते हैं? कि उनको प्रधानता देना यही विपरीतता है। जो चीज जानने में आती है उसको मुख्य करना, इसको मुख्य करने से ज्ञान स्वयं गौण हो जाता है, जानने वाला स्वयं गौण होता है, यही विपर्यास है। विपर्यास क्यों? इसको विपर्यास क्यों कहना? कि ज्ञान तो मुख्य है, मुख्य इसलिए है कि इसमें जानने में आता है, इसमें काय में जानने में आता है। जिसकी विद्युत विद्यमानता में, जिसकी मौजूदगी में अन्य चीज है ऐसा पता चलता है, दूसरी चीज है कि नहीं है इसका पता किसको चलता है? तो ज्ञान मौजूद है इसमें पता चलता है, तो वो तो ऊर्ध्व है, वो तो मुख्य हुआ। तो जो मुख्य है उसको गौण कर देना, यही विपर्यास है। मुख्य है उसको मुख्य नहीं रखना, और मुख्य है उसको ही गौण कर देना, यही मुख्य विपर्यास है। और वो आदत तो अनादि से बनी हुई है, तो नहीं बनाने की जरूरत है। और हर प्रसंग में किसी भी नए को जानने के काल में भी ज्ञान की मुख्यता रखे, ये गुण हो जाएगा। ये जो गुण होने से अपराध नहीं होगा, और ज्ञान को मुख्य करना यही आराधना है, वो ज्ञान आराधना कहते हैं जिसको, ज्ञान की साधना कहते हैं जिसको, ज्ञान की क्रिया कहते हैं, यही ज्ञान की आराधना है। ज्ञान तो है, ज्ञान कोई लाना नहीं है, ज्ञान को बनाना नहीं है, ज्ञान तो है ही, लेकिन उसको गौण करता है, मुख्य होने पर भी गौण करता है, यही विपर्यास है। मुख्य उसको मुख्य रखो, जो राजा है उसको राजा कहो, नौकर है उसको नौकर कहो, राजा नौकर को राजा बनाते हो, तो कहाँ का विवेक है, क्या विवेक है, विपर्यास है। ऐसे यहाँ पर भी आत्मा में अनंत प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है, अवगुण की उत्पत्ति होती है, दुख की उत्पत्ति होती है, मलिनता की उत्पत्ति होती है, इसका यही कारण है कि यहाँ से विपर्यास चालू करता है। जी जिस गे को जानता है उसको मुख्य करके उसे पीछे दौड़ता है, उसको ठीक जानता है, अठीक जानता है, ठीक जानता है तो जुटाने को दौड़ता है, अठीक जानता है तो उसको हटाने के लिए तूफान करता है। विपर्यास, यहाँ से विपर्यास चालू हो जाता है। अगर ज्ञान को मुख्य करे तो ज्ञान तो वेदक स्वभावी है, अनुभूति स्वरूप है। ज्ञान में सिर्फ जानना उतना ही नहीं है, उसका मुख्य धर्म तो वेदन करना, अनुभव करना ही है। तो उसमें स्वयं का वेदन है, ज्ञान में ज्ञान का स्वयं का वेदन है, और उसकी प्रत्यक्षता भी है। वेदन तो हमेशा प्रत्यक्ष ही होता है, वेदन में परोक्षता कभी होती ही नहीं। अपना जो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन स्वरूप आत्मा है, उसकी अस्थि, उसकी अस्थि वेदन से, प्रत्यक्षता से अनुभव गोचर होती है। यही धर्म है, यही स्वभाव है, यही धर्म है, धर्म कोई दूसरी चीज नहीं है। न धर्म कोई मंदिर बनाना है, न धर्म कोई जप करना है, न तप करना है, न कोई यात्रा करना है, न कोई दान देना है, न कोई शास्त्र पढ़ना है, कोई धर्म नहीं है। धर्म तो ज्ञान, ज्ञान का अनुभव करे उसी को ही धर्म कहते हैं, और कोई धर्म की चीज नहीं। ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे और दूसरा अनुभव नहीं करे, दूसरा अनुभव हो नहीं सकता फिर भी करता हूं ऐसा मिथ्या अनुभव मानता बनाए रखता है कि इसकी गलती है, ये अधर्म है, गलती को या अधर्म को। ज्ञान सुई ये आत्मा, अन्य हो सो कर्म, कर्म कटे सो जिन वचन तत्व ज्ञानी का पर। ज्ञान सुनी है आत्मा, सिवा ज्ञान तो सब कर्म की पर्याय है, राग कर्म की पर्याय है, राग अनुसार मन वचन काया की प्रवृत्ति कर्म की पर्याय है, सब कर्म प्रसंग है। अन्य और सो कर्म, मुमुक्षु को अकेले ज्ञान को पकड़े पूरा आत्मा ग्रहण हो जाएगा, एक ज्ञान से पूरी आत्मा पकड़ने में, ग्रहण होने में, अनुभव होने में एक ज्ञान का ही साधन है, और कोई साधन है ही नहीं। सब शास्त्रों का यही सार है, स्वानुभव करना, स्वसंवेदन से ज्ञान से ज्ञान का अनुभव करना, यही सब शास्त्रों का। सब शास्त्र मैंने 12 अंग का सार है, 12 अंग का ये सार है। वो व्यवहार से कहा है लेकिन असल में नहीं है। जैसे पड़ोसी को काका कहते हैं, मामा कहते हैं, पापा कहते हैं, उसने कुछ संबोधन कर देते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ज्यादा बुजुर्ग होते हैं दादा भी कह देते हैं, बुझाते हैं क्या?
नहीं।
ऐसे मोक्ष मार्ग में विचरने वाले परमात्मा को अंतरंग ऐसे स्वानुभव रूपी धर्मों के साथ साथ ऐसे परिणाम होते हैं, आपके परिणाम उनके छूट गए हैं, आपके परिणाम तो उनके छूट गए हैं, कि जो कोई राग का विद्यमानता राग की रह गई उसमें ऐसे ऐसे राग होते हैं, पड़ोसी जान करके उसका धर्म को धर्म का नाम दिया है लेकिन वास्तव में वो धर्म है नहीं। पड़ोसी को जैसा कहते हैं वैसा मान ले तो फिर अपनी संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, चाचा कहने से चाचा का हिस्सा देना पड़ेगा, तो देते हैं क्या? कहते हैं लेकिन देते तो नहीं, कहते हैं साथ दे देते क्या? नहीं देते तो कोई कहते क्यों कहते हो फिर? ऐसी बात हो गई है मान सम्मान संबोधन करने का तरीका है, और कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। ऐसे जिसको नेत्र मिलने पर भी जन्म मरण के नाश का कारण है, ऐसी अध्यात्म विद्या को शास्त्र के माध्यम से ग्रहण नहीं करता, उनके नेत्र हैं वो विफल हैं, उस काम के नहीं मतलब सफल नहीं है, विफल हैं, ऐसे कहते हैं। ज्ञानी गुरु के पास रह करके काम की बात लेते हैं, क्या कहा? ज्ञानी गुरु के पास रह करके, अज्ञानी गुरु के पास रह करके नहीं, गुरु का नाम तो शास्त्र संसार में बहुत से व्यक्तियों का नाम गुरु पाया जाता है, फिर भी ज्ञानी है यही गुरु के स्थान में अवधारण करने योग्य है। अज्ञानी है जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञानी मैंने शास्त्र ज्ञान नहीं लेना, जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं वो ज्ञानी है, ऐसे भी नहीं लेना। जिसको आत्मा का संवेदन ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। ऐसे ज्ञानी गुरु के पास रह करके और अज्ञानी गुरु के संग छोड़ करके वो बात इसमें अस्ति में नास्ति आ जाती है, क्योंकि दो जगह की उपस्थिति हो ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। ज्ञानी गुरु के पास रह करके जो शास्त्र श्रवण नहीं करता, जन्म मरण के नाश की विद्या को नहीं सीखता श्रवण करके, और हृदय में उसके भाव भी उदाहरण नहीं करते, इसलिए वो बात किया कि बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन हृदय में उसका उदाहरण नहीं करते, इसलिए वो बात कही साथ में कि श्रवण करके उसका उदाहरण नहीं करते। ऐसे मनुष्य वास्तव में कान और मन से रहित है ऐसा कहा है, उसको न कान है न उनको विवेक करने के लिए मन है। और दूसरे दूसरी बात का तो उदाहरण कर लेते हैं, संसार के अनेक संत संत का तो उदाहरण करते हैं, या तो मैं मनुष्य हूँ फलाना हूँ ऐसा तो उदाहरण कर लिया है, मैं आत्मा हूँ ऐसा उदाहरण नहीं किया, मैं फलाना मनुष्य हूँ मेरा ये कर्तव्य है, मनुष्य होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है ऐसा तो उदाहरण किया ही है। अब मैं आत्मा हूँ और मेरा धर्म क्या है वो उदाहरण नहीं किया। तो ज्ञानी गुरु के संग में रह करके उनकी वाणी को सुन करके हृदय में उदाहरण करके ज्ञानी तो ये कहेगा कि भाई तू देहादि स्वरूप नहीं है, तू रागादि स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही एक आत्मा है, चैतन्य तेरा स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप ही तू आत्मा है, तू त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी कहेगा। इनका मूल स्वरूप है वो दर्शाएगा। दीक्षित जी ने दिया है, धर्मदास दीक्षुलक ने दिया है, गुरु किसको कहना कि मुहूर् मुहूर् बारंबार पुनः पुनः जो बार बार शुद्धात्मा को आत्मा के शुद्ध स्वरूप को आत्मा के मूल स्वरूप को दर्शाता है बताता है उसको गुरु कहना। जिसकी भी वाणी सुनने का प्रसंग हो उसमें वो बार बार शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बस उतना ही ध्यान रखे तो उसको पता चल जाएगा कि आत्मज्ञानी गुरु है कि नहीं है। क्योंकि ये शुद्धात्म स्वरूप परमात्म तत्व ज्ञानियों का हृदय में विराजमान परमात्मा है, उसका श्रद्धा ज्ञान का ये मुख्य विषय है। तो ये बात ये बात इसकी बात उनकी वाणी में बार बार आए बिना रहेगी नहीं, चाहे कथानुयोग की बात चलती हो, करणानुयोग की चलती हो, चरणानुयोग की चलती हो, द्रव्यानुयोग का तो विषय ही यही है। चारों अनुयोग में किसी भी प्रकार के शास्त्र का अध्ययन हो, शुद्धात्म तत्व की बात जिसके मुंह से नहीं आती वो ज्ञानी होते ही, और ज्ञानी होते हैं इसके वाणी में ये बात आए बिना रहेगी नहीं। जिसको जिसकी मुख्यता है उसका ही गीत को गाया करता है, जगत में हर प्राणी को हर मनुष्य को यही बनता है। तो ज्ञानियों को अपने शुद्धात्म स्वरूप की मुख्यता है तो उसकी बात आएगी, सोने को सोने की बात आएगी, वकील को कायदा की आएगी, तो मरीज की बात आएगी। क्योंकि इनका मुख्य विषय यही है, इनका जो ज्ञान का बुद्धि का मुख्य विषय है इसकी मति अनुसार उसकी वाणी होगी। स्वरूप का गाना गावे ऐसे ज्ञानी उसके संग में रह करके शास्त्र श्रवण करना, कोई दूसरे के संग में रह करके भी शास्त्र श्रवण नहीं करना, ऐसी बात है। क्योंकि वो अपनी उल्टी सूटी बातें हैं वो कहेंगे और वो मान भी लेंगे, सुनने को बैठा है आदर भाव से तो स्वीकार कर लेंगे, सुनना तो इसलिए उसको है कि उसको आदर है सुनने में, उसका स्वीकार हो ही जाएगा, स्वीकार हो जाने से नुकसान हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार की इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं है, वो इंद्रिय रहित है, या तो इंद्रिय सहित है तो भी वो इंद्रियों के व्यापार से अपने आप को नुकसान ही नुकसान करेगा। जिस घर में कैदखाना होता है और उसमें कैदखाने में भी वो कैदी रहता है, उसी तरह वो भी कैदखाने में रहता है, चाहे बड़ा मकान हो आलीशान मकान हो फिर भी इनके लिए एक कैदखाना ही है, वो उसमें कैद रहा हुआ है। कैदखाने में अपनी अपनी कोठरी मिलती है, वो अपनी कोठरी बंद करके अगर बैठता है तो दूसरा कैदी नहीं मारता है। यहाँ भी संसार में सभी मनुष्य सभी प्राणी अपनी सजा भुगत रहा है, क्या कर रहा है, अपना अपराध की सजा, अपने किए हुए परिणाम का फल, उसको सजा कहते हैं, ये भुगत रहा है। कहाँ रह करके भुगत रहा है कि अपने मकान में रह करके भुगत रहा है, यही उसका कैद खाना है। अगर वहां उसने वितरागी देव गुरु शास्त्र के और उसके माध्यम के अपने स्वभाव धर्म की आत्म धर्म की उपासना की तो उसके लिए कोई नहीं। वो निरपराध हुए जा रहा है, वो अपराध छोड़ने को जा रहा है, वो निरपराधी हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए घर में सत्शास्त्र को होना ही होना, गुरुदेव की कृपा से अभी सत्शास्त्र नहीं मिलते हैं ये तो परिस्थिति ही नहीं रही, अपने तो हर मुमुक्षों के घर में पर्याप्त मात्रा में काफी मात्रा में सत्शास्त्र रखते हैं। सिर्फ रखना नहीं, रखना इसलिए कि उसकी उपासना करना, ऐसा नहीं हो कि वो एक अलमारी की शोभा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कबोर्ड में अच्छा कबोर्ड बनाया कांच का और उसमें सनमाइका का लगा करके शास्त्र बेस में रख दिया, ऐसा नहीं, उसकी उपासना करना ही बात।
उपासना करना क्या,
ये जैसे रखते हैं ना शोकेस, शोकेस में अनेक प्रकार के खिलौने रखते हैं, चिड़िया का हाथी का, ये बच्चों जो बच्चे जिससे खेलते हैं, बड़ों को भी अच्छा लगे तो बड़ा और बच्चों में क्या फर्क रहा, उसकी जगह सत्शास्त्र रखना और सत्शास्त्र को पढ़ना उस पर, वरना उस पर तो धूल लगेगी लगेगी, कितना भी पैक होगा तो भी धूल लगेगी, पढ़ेंगे तो उसकी सफाई भी रहेगी, उसकी असाधना भी नहीं होगी, तो क्रम से पढ़ता रहना, जितना भी समय मिले नहीं मिले तो खींच करके निकाल करके, समय को निकाल करके अपने कार्य में से हमेशा सत्शास्त्र का स्वाध्याय तो हमेशा करना ही चाहिए। गुरुदेव की तो ये प्रधान आज्ञा थी मुमुक्षुओं के लिए, मुमुक्षुओं को घंटा दो घंटा चार घंटा जितना भी समय ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि जितना भी ज्यादा समय हो सत्शास्त्र के अध्ययन में लगाना चाहिए।
तो वो
छाटना है, उगड़ना है। मैं आपके घर आऊं, आप ये भी नहीं बोलो कि आओ बैठो पानी वानी पियो चाय नाश्ता के बाद, तो मैं बोले वो बोलो भी नहीं आप। अरे बोलो क्या, सामने भी नहीं देखो क्या हुआ, फिर से तो मैं कभी आऊंगा नहीं, ये तो अपमान ही हो गया नहीं, कोई हमारे तो सामने भी नहीं देखा, अकेले आवे नहीं देखे। और वहां लोग तो ऐसे देखते हैं, वो जाते हैं ना शादी वगैरह में फंक्शन में, बहुत से लोग होते हैं, फिर भी वो नोट करते हैं हमको, हमको हमारे साथ बोले कि नहीं बोले, हमको आदर सत्कार किया कि नहीं किया, हमारे साथ बात किया कि नहीं किया, भले उतना ही हाथ ऊंचा किया गया कैसे हो दूर से, इतना भी किया कि नहीं किया तो उसने नोंद किया कि वो आए हैं, आया नहीं आया किसको दरकार, ऐसे शास्त्र पढ़ा हो किसको दरकार, पढ़े रहने दो। शास्त्र, फिर शास्त्र रखने का बसाने का मकसद क्या है, क्या हेतु है इसके पीछे, इसके पीछे तो कोई हेतु नहीं रहा, अलमीरा की शोभा होगी, कोई खिलौना नहीं है, शोभा की चीज नहीं है कि अच्छे अच्छे इसके वो कवर पर लगा दें, कवर पेच करके फिर उसको रख दे अच्छा लगेगा, दिखाने की चीज नहीं है। बीजा को ख्याल लाने का कोई, दूसरे को ख्याल ऐसा दे करके, ऐसा आडंबर करके क्या क्या लेना है, मैं भी आध्यात्मिक शास्त्र मेरे घर में रखता हूँ, ऐसा दूसरों को ख्याल आवे, ऐसा आडंबर करके क्या लेना है दूसरों से, कुछ लेना है तो कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई और काम करवाना है, क्या बात है। आत्महित करने की जो चीज है, इस चीज से दूसरे पर इम्प्रेशन डालने का धंधा लेकर के बैठे, चाहे पढ़ करके, बोल करके, सुना करके, सुन करके, शास्त्र रख करके, ये सभी आडंबर है और केवल पाप का धंधा है, उसमें तो पुण्य भी नहीं है, पाप हो जाएगा दूसरों से। जी दर्शन वंदन पूजन करो, अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों करते हैं वो दर्शन वंदन पूजन, कि इसमें बोध है, उपदेश है, आत्महित की बातें हैं, तो वो बातें तो ग्रहण नहीं करे और पूजन वंदन कर ले। भूख लगे फिर भी भोजन जो थाली में हो उसको नमस्कार करके सो जाना है, चावल चढ़ा देना भोजन को और सो जाना, भूख मिटेगी क्या, ऐसे तो भूख नहीं मिटती। समय नहीं मिलता है तो समय तो जहाँ कुछ लाभ है वहां तो निकालता है, जो नहीं निकालता है, जहाँ लाभ होता है पैसों का हो, दूसरा कोई भी हो, संसार के किसी भी काम का लाभ हो, वहां समय मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर कोई ऐसा कहे, एक साधारण परिवार हो जिसमें प्राय आजीविका का साधन मुश्किल से होता हो, ऐसे घर में ऐसा कोई कहे कि भाई आपको रात को 3:30 बजे उठ करके हमारे यहाँ आना है, थोड़ा भी हम घंटा भर का काम आपको दे देंगे, आपको 1 महीने का खर्चे की कोई चिंता नहीं है, आपका परिवार का पूरा खर्चा हम दे देंगे, लेकिन हर रात्रि को 3:30 बजे उठ करके 1 घंटा 4:30 तक हम कुछ काम बताएंगे, आपको ये लिखना है बोल देंगे या बता देंगे, आप लिख देना कर देना उतना काम बता देना, कोई कहेंगे अगर एक घंटा के सामने सारा महीना का 8 घंटे का पगार मिलता हो तो ये क्या कहेगा, हमको नींद आएगी ऐसा कहेगा? 3:30 बजे तो नींद आता है, वो कहेगा कि तुम 5 मिनट लेट आओगे तो फिर ये घंटा मैं तुम्हारा काम नहीं लूंगा, और इसका परिश्रम भी नहीं दूंगा, पारिश्रमिक भी नहीं दूंगा। तो नहीं उठे तो पत्नी घर में 3 बजे से उसको हिला के उठाएंगे, क्या करेंगे? तो पता नहीं 1 घंटे में 8 घंटे का पैसा मिलता है तुमको, पर तुम उठते नहीं हो, नींद आती है कैसे करे? सो जाना दिन को, कभी भी सो जाना, अभी तो उठना ही पड़ेगा, धक्का मार करके निकालेंगे घर से, निकलो तुम यहाँ से, काम तो काम नहीं करते, हाल से किधर पड़े रहते हो, प्रमादी हो, ऐसे हो वैसे हो, क्या क्या सुनना पड़ेगा। जहां भी अपना लाभ का कारण हो वहां समय भी है और वहां रस भी होता है। रस और समय कहाँ है? कोई ये कहेंगे कि हमको रस नहीं, हमको समय नहीं, इसका मतलब कि उनको लाभ है ऐसा समझ में आया नहीं, ये बात साफ है। उसमें शांति मिलती है। लाभ कोई रुपया आना रुपये पैसे में ही थोड़ा होता है, लाभ तो आबरू कीर्ति में भी मानते कि नहीं मानते, पैसा दे करके वो तख्ती लगाते कि नहीं, अपना नाम लिखाते हैं पैसा दे करके, तो उसमें लाभ माना कि नहीं लाभ माना? पैसे में ही लाभ है उतनी बात नहीं है, दूसरी दूसरी भी लाभ के अनेक प्रकार की परिस्थिति होती है। तो यहाँ शांति अशांति का सवाल है, जीव को आत्मा को आत्मा में से आत्मिक शांति मिले और सभी प्रकार की अशांति के प्रसंग में भी अशांति नहीं होवे, इसका मूल्य का क्या हो सकता है? उसका मूल्य कोई रुपये पैसों में गिना नहीं जाता। कोई अशांति को नहीं छोड़ने के और अशांति का त्याग नहीं होने की मूल जो गुटी है यही गुटी है कि पहले कमा लो और फिर शांति से धर्म करूंगा, यही शांति नहीं छूटने की बात है मूल में। आधार किसका लिया? सुगल का लिया। शांति तो आत्मा के आधार से होगी, शांति कोई संयोग के आधार से न किसी को हुई है न किसी को होने वाली भी है, ऐसी बात है। अगर ऐसा होता तो जो लोग संपन्न है वो हमेशा शांति से अपना जीवन गुजारते, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष तौर से दिखने में नहीं आते और कहीं दूर देखना नहीं जाना पड़ता, अपने परिवार में सगे संबंधी में देखते ही पता चल जाता है कि किसको कितनी अशांति होती है, ये पता चल जाता है, और अपने आप को देखे तो भी पता चल जाता है। जैसे ये दर्द होती है वेदना होती है उसमें भी शांति तो जिसको शांति का उपाय शांत धर्म मिला हो उसको मिलती है, वरना क्या करेंगे? कोई पैसे से वेदना मिट जाएगी, कोई जेवर से वेदना, जेवरात से कोई वेदना मिल जाएगी, कोई मान कीर्ति देने से मिल जाएगी, कोई परिवार के लोग आने से मिलने से कोई वेदना हट जाएगी मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। कौन शांति का कारण बन सकता है? कि अपना ज्ञान और अपना समाधान और अपना शांत धर्म है उसकी प्राप्ति ही शांति का कारण रहता है, और कोई शांति का कारण जगत में नहीं। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा लाभ कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है क्या? ये लाभ कोई थोड़ा लाभ है या इसका कोई मूल्य हो सकता है दूसरी चीजों से? तो हो ही नहीं सकता। ये 242 243 इसमें स्वरूप आत्मस्वरूप की महिमा की बात एक पंक्ति में एक वचन में लिया है, एक ही वचन में महिमा किया है। ओ ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व का हाजा गगड़ा ही गगड़ी जाता। हाजा क्या गगड़ता क्या कहते हैं आप हिंदी में? नहीं आता है, अतर्वण नहीं है, है? नहीं है हिंदी से है भुक्का बोलना हो तो टूट जाना। हाजा गगड़ने में क्या होता है असल में, इसका फीलिंग क्या है मैं बताऊं कि जैसे कोई कोई ऐसा कहे कि भाई ये पड़ोसी जो वाला राज है पाकिस्तान का बम्बार्डिंग होगा, सचेत रहिए जागृत रहिए। एक चुनौती आती है कि बम्बार्डिंग हो रहा है, बम वर्षा होगी आकाश से, उनके जो प्लेन है वो घूम रहे हैं, तो सुनते ही किसी को टट्टी पिशाब हो जाए, वोमिट हो जाए, ये हो जाए, बेसुद्ध हो जाए, कोई साथ साथ गुमा दे, ऐसी परिस्थिति तीव्र घबराहट की जो परिस्थिति है उसको गुजराती में कहते हैं कि हाजा गगड़ी किया, उसका तो हाजा गगड़ी किया, इतना भयान सामान्य भय नहीं, तीव्र भय की जो फीलिंग होती है उसका एक शब्द है। आपके हिंदी में कुछ उसी होगा ही, ध्रुजे तो ध्रुजारे तो कंपन हो तो मामूली है, उसमें तो क्या होता है कि जैसे मृत्यु के पहले ही मृत्यु हो गई ऐसा लगे, मर गए हम तो कैसे जिंदा रहेंगे, मर गए मर जाएंगे, अभी अभी मर जाएंगे, मरने के पहले जो मृत्यु का भय होता है इसको ऐसे कहते हैं। ऐसे मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाती है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र सभी दोषों की मृत्यु होती है। कैसे मृत्यु होती है कि ऐसे आत्मस्वरूप की चमत्कारी स्वभाव है, आत्मा में जो चमत्कारी स्वभाव है, जो संसार का दीनहीन प्राणी है वो इस विद्या से इस स्वभाव की बात को लक्ष्य में लेने से सिद्ध पद में पहुंच जाता है, ऐसा एक बड़ा चमत्कार है। सीधा ही सिद्ध पद में पहुंचता है, है बिल्कुल दीन प्राणी है जो अपने सुख के लिए पौद्गलिक पर्यायों परमाणुओं के पर्यायों के पास सुख की भीख मांगता पड़ता है, ऐसे दीन प्राणी को सीधा ही सिद्ध पद में पहुंचाने वाली बात कि जो सिद्ध पद में अनंत परमानंद का साधे अनंत काल भोगने का होता है, ऐसा सिद्ध पद है। अनंत परमानंद में विराजमान रहना कब तक? अनंत काल तक, किसी एक समय भी इससे च्युत होकर के दुख में आने का नहीं होगा, परमानंद मिटेगा नहीं। ऐसा चमत्कार करने वाला कोई सब बात है, कोई स्वभाव की बात है, ऐसा आत्म स्वभाव है, उसको लक्ष्य से सुने, स्वभाव के लक्ष्य से सुने, सुने उतनी बात नहीं, देखो ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने, मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा लक्ष्य होवे जिसमें, उसको स्वभाव का लक्ष्य कहने में आता है। लक्ष्य ऐसी चीज है कि एक बार लक्ष्य बन जाने से कभी छूटता नहीं, जो छूटे उसको लक्ष्य कहते नहीं, जो निरंतर चालू रहता है ज्ञान में उसको लक्ष्य कहते हैं। ऐसे स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व का हाजा गगड़ जाता है, तो भाव गगड़ी जाता है, क्या कहते हैं, भाव गिरता है, गिरता है, गगड़ता मैंने गिरता है, ऐसे हिम्मत गिर जाती है, जिसकी जिंदा रहने की हिम्मत खत्म हो जावे, ऐसा भय होवे उसको हाजा गगड़ी जाए ऐसा कहने में आता है, ऐसी हिम्मत नहीं रहती। ऐसे मिथ्यात्व जो अनादि से रूढ़ हो गया है, जिसका संस्कार आसानी से छोड़ा नहीं जाता, उसको एक क्षण में उसका नाश हो जाता है, एक क्षण क्या, एक समय में उसका नाश हो जाता है, एक सेकंड के असंख्य भाग में, एक विचारने लायक चीज ऐसी है कि सभी संसारी जीव को अपने मोह भाव का अनुभव है, ठीक है। इस मोह भाव का अनुभव को ठीक तरह से देखे, तलाश करे, तो उनको पता चलेगा कि ये छूटना आसान नहीं है, मामूली नहीं है। ऐसा एक मोह का पक्कट, मोह भाव का पक्कट जीव के परे, जीव जीव के जीव वस्तु पे है, अपने आप पर है, कि जिसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये छूटता नहीं, ये छोड़ा नहीं जाता। सभी प्राणियों को देखते हैं तो सभी मोह ही देखने में आते हैं, खुद ही स्वयं भी मोहान्वित देखने में आता है, तो देखता है कि ये तो सर्वसाधारण परिस्थिति है, संसार में मोह कोई छोड़ नहीं सकते, ऐसा लगता है। इसलिए बहुत से मनुष्य तो मोह छोड़ने का उपाय के विचार में भी नहीं लगते, पूर्वग्रह से ही इस मार्ग को छोड़ देते हैं। तो मोह जब छूटता ही नहीं है, फिर इसके छोड़ने के लिए माप सिर पूरी कैसे करें? ये छूटने वाली चीज नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि छूटने वाली चीज नहीं है। तो बहुत से लोग तो इसका प्रयत्न ही छोड़ देते हैं, इस मार्ग से विमुख हो जाते हैं और संसार में जो भी मोह से अपने संसार के कार्य होते हैं उसमें लगे रहते हैं। अब जो कुछ धार्मिक क्षेत्र में आकर के इस मोह के छोड़ने का उपाय का विचार करते हैं, उसमें भी कोई एक विरल जीव को, यानी बहुत कम मात्रा में किसी जीव को मोह छोड़ता है, उसमें भी सभी को नहीं छोड़ता है, ऐसा भी देखने में आता है। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी ये वितराग मार्ग में एक बहुत सुंदर सुविधायुक्त परिस्थिति है कि एक समय में मोह छोड़ता है,
एक समय में
छोड़ता है, कोई लंबा काल इसमें नहीं होता है। कब? कि जब जिस ज्ञान से मोहान्वित होकर के गेय को प्रधान करता है, बस वही ज्ञान अपने आप को मुख्य करके ज्ञान में ज्ञान का भेदन करे। ज्ञानात् मोहं प्रणश्यति, और मोह का विनाश का एक ही कारण है, मोह नाश का एक कारण एक ज्ञान ही है और कोई कारण नहीं है, और वो ज्ञान दूसरा कुछ नहीं, ज्ञान का ज्ञान स्वसंवेदन है, ज्ञान का अपने आप का वेदन है, बस उसको उपयोग में लिया, उसका ग्रहण किया, मोह खत्म। जैसे स्वप्न में कितना भी दुख भोगा हो, कोई मार मारते हो, बहुत मार मारते हो, मार मार करके उतना मारा, इतना मारा, दुखी दुखी हुए, जागृत होते ही नहीं, ये तो सपना था, मुझे कुछ दुख हुआ ही नहीं, जितना दुख स्वप्न में भोगा वो बेकार कल्पना थी, वास्तव में कुछ था ही नहीं, ऐसी परिस्थिति एक समय में हो जाती है। जागृत होते ही ये ज्ञान से स्वरूप में जागृत होने की स्थिति है, और इसे श्री गुरु कहते हैं, बताते हैं, अगर ये विद्या साध्य हो गई, ये टेक्निक आ गई, बस ये अप्राणी संसार के मोह से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, उसको नहीं छूटने के लिए कोई परिस्थिति फिर नहीं है, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि अन्य कोई साधन की इसमें अपेक्षा भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप स्वयं ही है, ज्ञान हुए ही जा रहा है, होता ही रहता है, सिर्फ वो किसको वेदता है, यही विवेक करना है। ये को वेदता है तो अपराध को करता है, और अपने आप को वेदता है संवेदन से तो वो आराधन करता है, अपराध नहीं करता है। राध धातु है, आराध और अपराध, आराधन करे या अपराधन करे, एक ही कारण है, ज्ञान चाहे इस तरफ ले जाए चाहे इस तरफ ले जाए। सीधी सादी बिल्कुल समझ में आ जाए, त्रियंश को भी, कम बुद्धि वाले को भी समझ में आ जाए, कोई लंबा शास्त्र ज्ञान होवे नहीं होवे कोई आवश्यकता नहीं है, उतनी ही टेक्निक समझ में आ जाए और उसको अंदर प्रयोग में कर सके, लागू कर सके, वो आत्मा हमेशा के लिए शांति का मार्ग पर उतना आगे बढ़ जाएगा, सिद्ध दशा में परमानंद को प्राप्त हो सकेगा। ऐसी परिस्थिति एक वचन में गुरुदेव ने यहाँ ली है कि अगर तेरा स्वसंवेद्यमान स्वभाव है, उसको अपने स्वभाव के लक्ष्य से सुने, तो तेरा हर प्रकार का अपराध खत्म होने वाला है, अपराध खत्म हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध के फल भोगने पड़ेंगे, क्योंकि अपराध ही नहीं है तो अपराध के फल भोगने का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे स्वभाव की जो बात है, ऐसे मूल स्वभाव, उसको सुनना, उसको पहचानना, उसको रुचि से ग्रहण करना, उसका लक्ष्य करना, उसका अनुभव करना, ये बात है।
देव भगवान।